भागवत सार की श्रृंखला में आज नवे अध्याय पर चर्चा है, तीसरे स्कंद के, जिसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति या प्रार्थनाएं। इसका बड़ा सुंदर श्लोक है, 11वां श्लोक ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है भक्ति के विषय में, तो इसको दोहराएंगे और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा यद्यद्दियत उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा यद्यद्धियत उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे तत्सदनुग्रहाय त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा यद्यद्दियत गुरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय शत प्रतिशत लगे रहकर हृत हृदय के सरोजे कमल में आसे निवास करते हैं। श्रुत इक्षित कान के माध्यम से देखे हुए पथ पथ ननु अब नाथ हे स्वामी पुंसा भक्तों का यत यत जो जो धिया ध्यान करने से तेह आपका उरुगाय हे बहुख्यातिवान विभावयंती विशेष रूप से चिंतन करते हैं तत्तत् वही वही वपुः दिव्य स्वरूप प्रणय से प्रकट करते हैं सद अनुग्रहाय अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के लिए। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर यह कथन कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहता है, यह संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। किंतु यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेश वाहक नहीं होते। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है, त्वं भक्ति योग परिभाविता। यह उस दक्षता का सूचक है जो भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। यह प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्ति में संलग्न हो सकता है जिसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संस्तुत मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। इसे यहाँ पर श्रुते क्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। क्षुते क्षित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों को सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और संसारी आवेश से मुक्त होते हैं। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवदीक्षित भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। यह विशेष आसक्ति भगवान की वैरी भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह की पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय में हृदय कमल में आसीन हो जाते हैं और इस तरह भगवान भक्त से विलग नहीं होते जैसा कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई है। किंतु भगवान किसी आकस्मिक या अप्रमाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। प्रत्युत भगवान अपनी योग माया द्वारा उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने को गोपित रखते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगे होते हैं। भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो विश्व के मामलों का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान कभी छद्म भक्त के आदेशवाहक नहीं बन सकते, अपितु वे शुद्ध अबद्ध भक्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोचत कर हान मुंच कदाचिन्मा प्रेम नारुत्कंठ योस्फुरा। हरे कृष्ण।
तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं करनी प्रारंभ की। पिछले अध्याय में हमने देखा कि ब्रह्मा जी भ्रमित हुए, कुछ पता नहीं था क्या करना है, और फिर उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तपस्या की, भगवान के दर्शन हुए। और अब इस अध्याय में ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं करते हैं। तो इस अध्याय में दो भाग प्रमुख हैं, 43 श्लोक हैं इस अध्याय के। पहले 25 श्लोकों में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, और आगे का अंतिम का भाग, आगे के श्लोक, भगवान का वरदान देना या भगवान ब्रह्मा जी को उत्तर देते हैं। तो ये दो प्रमुख भाग हैं, जिनमें भी ब्रह्मा जी की जो प्रार्थनाएं हैं उनमें प्रथम प्रार्थनाओं में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं इस भौतिक जगत का, कैसे जीव कष्ट में है। सबसे पहले भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, फिर जीवों के कष्टों का वर्णन करते हैं, फिर वर्णन करते हैं कि कौन जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, और फिर वर्णन करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है। और फिर 14वें श्लोक से आगे ब्रह्मा जी 25वें श्लोक तक भगवान को समर्पण और नमन करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी की ये जो प्रार्थनाएं हैं ये बटी हुई हैं। तो ब्रह्मा जी प्रारंभ करते हैं भगवान के रूप को। अभी अभी उन्होंने भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किया है, भगवान समक्ष हैं। पिछले अध्याय में भगवान के अलग अलग अंगों का वर्णन हुआ, कैसे लग रहे थे भगवान। तो अब भगवान को वो देख रहे हैं, और भगवान को देख कर वो सबसे पहले कहते हैं कि आपकी कृपा से, क्योंकि मैंने अभी तपस्या की, तपस्या किससे हुई, आपकी कृपा से, तो अब मैं इतने समय बाद आपको देख पा रहा हूँ। तो अर्थात ये सबके लिए संभव नहीं है, ये जो रूप मैं अब देख रहा हूँ ये अनेक अनेक वर्षों की तपस्या के बाद अब मैं आपको जान पाया हूँ। और फिर ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि ये जो आपका सामने ये जो रूप है, जो आप हैं, ये सर्वोच्च हैं, इसके परे कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि इनके परे कुछ और है तो वो परम सत्य नहीं हो सकता, अर्थात आप ही परम सत्य हैं। कभी कभी लोग कहते, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि हमारे अज्ञान की पराकाष्ठा, प्रभुपाद तात्पर्य ही प्रारंभ करते हैं इस लाइन से। प्रभुपाद कहते हैं कि जीव की अज्ञान की पराकाष्ठा है भगवान के विषय में ना जानना, और प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोग, और भगवान सामने है, रूप है, सुंदर रूप, लेकिन भगवान के रूप को ना समझना ये मोह के कारण है। तो इसलिए ब्रह्मा जी शुरुआत में ही ये बतला रहे हैं कि सर्वोच्च चीज भगवान का रूप है। कई ऐसे लोग हैं जो भगवान को अपने मन से जानने का प्रयास करते हैं, भगवान के विषय में कई धारणाएं देते हैं। हम लोग तो भाग्यवान हैं कि हम लोगों को बचपन से भगवान की भक्ति, भगवान के रूप का अवसर मिला, सुनने का अवसर। लेकिन कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आज भी ये माना जाता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान मतलब ये बस भौतिक प्रकृति। कुछ लोग कहते भगवान मतलब प्रेम, बस वही भगवान है। कुछ लोग कहते मैं ही भगवान हूँ, आप ही भगवान हैं, इत्यादि। आप सोचिए इन धारणाओं में रहने वाला व्यक्ति कैसे कभी भगवान को प्राप्त कर सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए कम से कम भगवान के रूप को तो मानना चाहिए कि भगवान है, तब तो प्राप्त होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के रूप को नहीं मानता, खुद को भगवान मानता है, या भगवान को प्रकृति मानता है, या भगवान को प्रेम मानता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को कहाँ प्राप्त कर पाएगा। तो हम लोगों का कितना भाग्य है कि हम एक ऐसे मार्ग पर हैं जहाँ हमारे लिए पूर्णता को प्राप्त करना सरल है, संभव है। अन्यथा उनके लिए, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बड़ा ही दुष्कर है, असंभव है। अगर वो लोग ध्यान भी करेंगे तो किस पर ध्यान करेंगे। एक बार हम लोगों ने ऐसे एक अभ्यास किया था, 5 मिनट तक ध्यान करना है, किस पर? किसी पर नहीं, निराकार, निराकार, मेडिटेट ऑन नथिंग, किसी पर भी नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, किसी ना किसी रूप का सोचेंगे, अगर कृष्ण का नहीं सोचेंगे तो कुछ और ध्यान आए। और वही अगर केवल 5 मिनट हम कृष्ण के रूप पर ध्यान करें आंखें बंद करके, बड़ा सरल है, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण का मुकुट, कृष्ण का मुस्कान, कृष्ण के हाथ, कृष्ण के कपड़े, कृष्ण के आभूषण, बहुत सरल है। तो इसीलिए भगवान के रूप का वर्णन वो करते हैं, ब्रह्मा जी ये बतलाते हैं कि यही रूप श्रेष्ठ है। फिर आगे प्रार्थनाओं में कहते हैं कि ये जो रूप है, ये सारे जो अवतार हैं, सारे जो अन्य चीज हैं, उनका स्रोत है, ये बीज रूप में है, और इसी से फिर सब कुछ आता है, आपका मूल रूप है। और फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगते हैं, जीवों का विषय कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जीव बहुत कष्ट में है, आपको जान नहीं पाते हैं, इसीलिए देखिए कितने कष्ट में जीव रह रहे हैं, हर समय कष्ट भोगते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं, भूख लगना, प्यास लगना इत्यादि, और मोह में पड़ना, मतलब बहुत सारे वासनाओं को बनाए रखना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब जीव में है, और इन्हीं के कारण उसके जीवन में अशुभता है, और क्योंकि उसके जीवन में अशुभता है इसलिए आपको प्राप्त नहीं कर पाता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कौन व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं कर पाता, जो बड़ा दुर्भाग्यशाली है और जिसने अपनी बुद्धि खो दी है। दो लक्षण देते हैं उस व्यक्ति के, दुर्भाग्यशाली है। क्यों दुर्भाग्यशाली है? क्योंकि जो भगवान को जान लेता है वो भाग्यवान होता है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, लेकिन जो जान नहीं पाता दुर्भाग्यशाली है। लोग अपना बहुत भाग्य मानते हैं, मुझे ये प्राप्त हो गया, जगत में ये मिल गया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का अगर उसको कृष्ण नहीं मिले, तो वो कहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते। और दूसरा, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, अपनी बुद्धि को खो बैठे हैं और ये सोचते हैं कि इसके द्वारा, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसे लोग आपको कभी प्राप्त नहीं कर पाते, ब्रह्मा जी कहते हैं। ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसे ही जीवन में बने रहते हैं। और फिर वो कहते हैं आपको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, इस श्लोक से वो प्रारंभ करते हैं। तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज। वो कहते हैं कि आपको प्राप्त करने का सरल मार्ग है भक्ति। जब तक कोई भक्ति नहीं करता आपको प्राप्त नहीं कर सकता, भक्ति करते ही आप उसके हृत सरोजा, हृदय में, हृदय रूपी कमल में विराजमान हो जाते हैं जाके। सरोज कमल को कहते हैं, हृत हृदय को। तो जो भक्ति करता है उसके हृदय में आप चले जाते हैं, अन्य कोई व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं कर सकता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस सृष्टि के पहले जीव, पहले ब्राह्मण, पहले ऋषि। हम लोग ऋषि मुनियों की बात मानना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी की माननी चाहिए। ब्रह्मा जी पहले ऋषि हैं, फिर उनसे सारे ऋषि मुनि आते हैं। ब्रह्मा जी के पहले कोई ऋषि नहीं है इस ब्रह्मांड में। भगवान भी आगे जब उत्तर देना शुरू करेंगे तो ब्रह्मा को कहेंगे आप पहले ऋषि हो इस ब्रह्मांड के। तो जो ब्रह्मा जी हैं, जो पहले जीव, पहले ऋषि, पहले ब्राह्मण, वो हमें बता रहे हैं त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज। आसे, आसे यानी निवास करते हैं आके। तो इसीलिए भगवान की भक्ति का वो गुणगान करते हैं और वो कहते हैं श्रवण केवल सुनने मात्र से, जीव केवल सुनने से, भगवान के श्रवण से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वो भगवान के रूप की आराधना वो करना चाहते हैं। और भक्ति के वर्णन करते हुए प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति मतलब संबंध स्थापित करना। और संबंध किससे स्थापित होगा, व्यक्ति से। अगर कोई व्यक्ति नहीं है हम संबंध कैसे स्थापित करेंगे, हम हवा से अपना संबंध कैसे स्थापित करेंगे, क्या संबंध होगा, क्या हमारा आदान प्रदान होगा। तो भक्ति का अर्थ है आदान प्रदान, संबंध। जैसे कोई दो व्यक्तियों का संबंध होता है, माता और पुत्र का संबंध होता है तो उनके बीच प्रेम का आदान प्रदान होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है। तो संबंध चाहिए, तो भक्ति मतलब संबंध। और किससे संबंध, कृष्ण से। वेदों में जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, जितने महाप्रभु समझाते हैं, तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं सारे वैदिक शास्त्र में। कृष्ण संबंध, भक्ति अभिदेय हय, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वाक्य कय। सारे वेदों का सार तीन वाक्यों में कहा, कह दिया चैतन्य चरितामृत में। और क्या तीन वाक्य हैं, कृष्ण संबंध, भक्ति अभिदेय हय, प्रेम प्रयोजन। तो सारे शास्त्रों का सार ये है कि हम कृष्ण से अपने संबंध को जाने। केवल इसलिए सारे शास्त्र दिए हैं। शास्त्र इसलिए नहीं दिए हैं कि आप उनका पालन करके इस जीवन में सुखी होने का प्रयास कीजिए, यह उद्देश्य नहीं है शास्त्रों का। हालांकि शास्त्रों में यह भी कहा गया, ऐसी चीजें भी दी गई हैं, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कृष्ण संबंध, कृष्ण से संबंध को। तो प्रभुपाद कहते हैं भक्ति मतलब संबंध, रिलेशनशिप। किससे संबंध होगा अगर भगवान नहीं है। इसका और एक अर्थ हम समझ सकते हैं कि भक्ति मतलब संबंध, अर्थात जब हम भक्ति करें तो हमारा भक्तों के साथ, सारे जीवों के साथ, भगवान के साथ अच्छा संबंध हो। जिस व्यक्ति की भक्ति अच्छी है उस व्यक्ति के संबंध अच्छे होंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण, हर एक जीव से वो संबंध स्थापित करने के लिए तैयार थे, पाश्चात्य जगत चले गए, जानते नहीं थे किसी को। जिस दिन प्रभुपाद उतरे हैं अमेरिका में, उनको पता नहीं था कि इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। कोई लेने नहीं आया था, कोई सारी व्यवस्था नहीं थी, किसी को नहीं जानते थे। लेकिन देखिए, थोड़े ही समय में संबंध इतना हो गया कि लोगों ने अपने जीवन तक उनको समर्पित कर दिए। किस लिए? क्योंकि उन्होंने कृष्ण से संबंध स्थापित किया। तो कृष्ण से संबंध स्थापित करने का अर्थ है सभी जीवों से संबंध हो जाता है। हमारा तो सभी जीवों से संबंध है ही, आज भी है, हम उसको भूले हुए हैं। कृष्ण से संबंध को याद करके फिर हम उस सारे संबंध को स्थापित करते। तो हम एक और बात सीख सकते हैं कि भक्ति का अर्थ है अच्छे संबंधों को बनाना। भक्ति मार्ग में भक्तों से, हर जीव से, तो ऐसे संबंध, प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति मतलब संबंध स्थापित करना कृष्ण से और भक्तों से। दूसरे शब्दों में, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों से अच्छे संबंध होने चाहिए। आपस में बड़े अच्छे संबंध रखकर जब हम आगे चलते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां हमारे संबंधों में दरार आती है तो ना तो हम किसी को मदद कर पाते हैं, ना कोई हमें मदद कर पाता है, और हमारी प्रगति रुक जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि भक्ति में कोई नुकसान नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोड़ा भी आपने किया है तो बना रहेगा, लेकिन प्रगति रुक जाती है। तो इसीलिए ये संबंध को जानना है कि भगवान से संबंध है। तो ब्रह्मा जी ऐसे फिर प्रार्थनाएं करते हैं और वो कहते हैं कि किस तरह से आपको जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं आपके पास नहीं आ पाते, और आते भी हैं तो कोई इच्छा की पूर्ति के लिए आते हैं। कभी कभी लोग जाते हैं भगवान के पास तो केवल इच्छा की पूर्ति के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी कष्ट हैं जीवों के, ये तो सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। क्योंकि जीव ने अपने आप को शरीर मान लिया है, इसीलिए सारे कष्ट हो रहे हैं, इसलिए मिथ्या है। लेकिन फिर जो लोग आपकी भक्ति में लगते हैं, आपकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, वे लोग आपको प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आगे वो वर्णन करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, भगवान को नमन करते हैं। फिर 14वें श्लोक से आगे भगवान को नमन करना, बाकी 25वें श्लोक तक हम देखते हैं हर श्लोक में प्रायः ब्रह्मा जी समर्पण करते हैं, नमन करते हैं। तो ब्रह्मा जी की अगर ये प्रार्थनाएं देखी जाएं तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पहली चीज भगवान का रूप, दूसरा चीज हमारे कष्ट, तीसरा चीज कष्टों से बाहर जाने का मार्ग, और चौथा चीज उसकी पूर्णता। ये बड़ा स्पष्ट उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में किया। अर्थात हमारे लिए क्या मार्ग है भक्ति का? सबसे पहले भगवान के रूप को स्वीकार करना, श्री कृष्ण को स्वीकार करना, भगवान को स्वीकार करना, और फिर दूसरी प्रार्थनाओं में वो कहते हैं अपने कष्टों को समझना। जब जीव भगवान से अपने संबंध को स्थापित करने के प्रयास करता है तब सही दृष्टि में इस जगत के कष्ट उसको समझ में आते हैं। इस जगत में कष्ट क्या है? कोई सोचता है कि भोजन नहीं मिलना कष्ट है, कोई सोचता है कि कपड़ा गहना नहीं मिलना कष्ट है, मान प्रतिष्ठा कष्ट है। नहीं, जब हम कृष्ण से संबंध स्थापित करते हैं तब हमें पता चलता है कि सच्चा कष्ट हमारे लिए कृष्ण से दूर रहना है। एक ही कष्ट है जीव का, और जिसके कारण बाकी सारे कष्ट हैं। तो इसीलिए जब जीव भगवान के रूप को स्वीकार करता है, भगवान को मानने लगता है, तब अपने कष्टों को जान लेता है कि मेरे जीवन में क्या क्या कष्ट हैं। तब उसे समझ में आता है मैं सुखी नहीं हूं, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बारंबार मरना, बारंबार जन्म लेना, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है, इस जगत में आना, कुछ धन कमाना, परिवार करना, संतान उत्पन्न करना, मर जाना, ये मेरा कार्य नहीं है। फिर क्या समझता है, भगवान की सेवा मेरा कार्य, और फिर मेरा ध्यान रखना भगवान का कार्य। और इस तरह से जीव जब भक्ति में लगता है ये जानते हुए, तो तीसरा भाग में वो भक्ति का वर्णन करते हैं कि जब ये जीव जान जाता है कि मैं कष्ट में हूं, तो उसको भक्ति करनी चाहिए। और कैसी भक्ति, जिसके प्रारंभ श्रवण से होता है, जिसे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, तो उसको ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और फिर भक्ति करके आगे फिर वो अपने उदाहरण से दिखलाते हैं समर्पण, भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान की महानता को। केवल भक्ति के द्वारा भगवान की महानता को जाना जाता है, नहीं तो बाहर के लोग केवल कहते हैं भगवान महान है, लेकिन क्या महानता है भगवान की। एक महानता का वर्णन इस तात्पर्य में प्रभुपाद करते हैं कि वो भक्तों के सेवक बन जाते हैं, ये भगवान की महानता। सेवक बनना इस जगत में एक निकृष्ट कार्य है, कोई बहुत बड़ी महान कार्य नहीं है। अगर कोई जाकर किसी का सेवक बन जाता है तो उसको कोई महान नहीं माना जाता है। लेकिन जब भगवान किसी के सेवक बनते हैं तो उस सेवक को तो महान माना ही जाता है, भगवान की महानता भी प्रकट होती है कि इतने बड़े स्वामी, सारी चीजों के स्वामी, सारी चीजों के स्रोत इस व्यक्ति के दास बन गए। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि भगवान आदेशवाहक नहीं है, ये जान लेना चाहिए। भगवान जब आदेश का पालन करते हैं अपने भक्तों का, तो किसी बद्धता से नहीं, प्रेम से करते हैं। आदेशवाहक मतलब नौकर, भगवान नौकर नहीं है कि हम गए खड़े हुए और आदेश दिया भगवान अगले हफ्ते मुझे बहुत पैसा मिल जाना चाहिए और भगवान ने भेज दिया। नहीं, भगवान प्रेम से आदेश का पालन करते हैं। जब हृदय में प्रेम होता है, भक्ति होती है, तो भगवान को अगर कहा भी जाए मेरा रथ इधर ले चलो, उधर ले चलो, सीधा चलाओ, भगवान चलाते हैं। तो ये जानना चाहिए। तो जब भक्ति की तो भगवान को समर्पण, जैसे भगवान को ब्रह्मा जी फिर अपनी प्रार्थनाओं में समर्पण करते हैं कि किस तरह से आपको जाना जा सकता है। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने बड़े हृदय से इन प्रार्थनाओं को अर्पण किया, इन सब बातों को बताया, ये भी बताया कि कैसे आपको जाना जा सकता है। जैसे आगे के श्लोकों में वो समर्पण करते हुए भगवान को कहते हैं, भगवान की स्थिति का भी वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान अलग अलग समय में प्रकट होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, जीवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी समर्पण करते हैं तब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। तो 27वें श्लोक से भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया। तो एक बात महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि भगवान ने उत्तर क्यों दिया, क्यों भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने, या भगवान क्यों बोले, आदान प्रदान क्यों किया। ब्रह्मा जी की तपस्या और ब्रह्मा जी के हृदय से निकली हुई इन प्रार्थनाओं को सुनकर, अर्थात भाव को ग्रहण करके, अगर हमें भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, भगवान कृपा देते हैं, भगवान आगे वर्णन करेंगे, तो अगर भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो उसके लिए तपस्या, ध्यान बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ ज्ञान, ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तपस्या अर्थात भौतिक भोगों से परे जाने की कामना, या कार्य, ऐसे कार्य जो हमें भौतिक भोगों से परे ले जाएं, उसे तपस्या कहते हैं। सच्ची तपस्या वो है जहां हम भौतिक भोगों को त्याग कर कृष्ण को स्वीकार करते हैं, कृष्ण की ओर जाते हैं, ये तपस्या है। बाकी शरीर को कष्ट देना, एक पांव पर खड़े हो जाना, गर्मी में आग लगाकर बैठना और सर्दी में ठंडे पानी में खड़े होना, कोई लाभ नहीं है अगर इसका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। अगर इसका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति है तो यही भक्ति है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए इस तरह। तो भगवान ने बोलना शुरू किया, तो भगवान किस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं जो भक्ति के द्वारा उन्हें जीत लेता है। नहीं तो भगवान बाध्य नहीं है आपके सामने आने के लिए, आपसे बात करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता श्री कृष्ण को। लेकिन भगवान जीते जाते हैं प्रेम से। ब्रह्मा जी आगे भी बहुत सुंदर प्रार्थनाओं में कहेंगे जीतो जीतो प्यस्य, अजीत को जीता जा सकता है भक्ति से। तो ब्रह्मा जी आगे जब हम लोग 10वें स्कंद में जाएंगे तब ब्रह्मा जी की फिर प्रार्थनाएं हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, तो उनको फिर से हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी इस तरह से भगवान से कह दिया तो भगवान ने उत्तर देना शुरू किया और भगवान ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ ब्रह्मा, क्योंकि तुमने तपस्या की है। और ब्रह्मा जी ने अपनी प्रार्थनाओं में, अंतिम प्रार्थनाओं में उनसे प्रार्थना की कि अब आप चाहते हैं कि मैं सृष्टि करूं तो मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, और ये भी कि मुझे अहंकार नहीं हो। देखिए ब्रह्मा जी ने यही प्रार्थना पहले भी हमने सुनी थी, ब्रह्मा जी ने दोहराई थी 2वें स्कंद में, ब्रह्मा जी वही प्रार्थना कह रहे हैं कि मुझे अहंकार नहीं हो तो आप ऐसा कार्य कीजिए। तो उस समय भगवान ने बोलना शुरू किया और भगवान ने कहा कि तुम्हें पहले से जो तुम मांग रहे हो मैंने दे दिया। तुम बोल रहे हो कि मुझे सृजन की शक्ति चाहिए, कैसे मैं सृजन करूं इत्यादि, कैसे ज्ञान होगा, ये मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है, क्योंकि तुमने तपस्या की वो ज्ञान तुम्हें मिल गया है, तो इसलिए चिंता मत करो। तो देखिए भगवान जीव की इच्छाओं को तुरंत पूरा कर देते हैं अगर वो इच्छा भगवान की सेवा के लिए है। ब्रह्मा जी सृष्टि भगवान की सेवा के लिए करना चाहते हैं, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। भगवान ने तुरंत प्रदान कर दिया। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि वो तो मैं तुम्हें पहले से दे चुका हूं और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने भक्ति की, मेरे रूप को स्वीकारा, मेरे रूप की पूजा आराधना की इत्यादि। भगवान कहते हैं कि बहुत प्रसन्न हूं। और भगवान कहते हैं कि कृपा, तीन चीज़ें भगवान देते हैं, भगवान की कृपा और भगवान योग्यता और संरक्षण, इन तीन चीज़ों को भगवान प्रदान करते हैं उस भक्त को जो भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न करता है। भगवान की कृपा आती है, भगवान योग्यता देते हैं कोई कार्य करने की, जैसे ब्रह्मा जी को योग्यता दी कि ठीक है तुम सृष्टि कर सको, और संरक्षण वो कहते चिंता मत करो तुम्हें कभी अहंकार नहीं होगा। तो जब भगवान ये तीन चीजें हमें प्रदान कर सकते हैं, भगवान कृपा कर सकते हैं, भगवान योग्यता और संरक्षण देते हैं, और अंत में भगवान बताते हैं बहुत सुंदर बात कि ब्रह्मा तपस्या क्या है, तुम जो कह रहे हो कि तपस्या की है तुमने और मेरी कृपा चाहिए, तो मेरी कृपा क्या है भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं तीन चीजें जो तुम्हारे अंदर हैं वो मेरी कृपा है। एक है तपस्या, जैसे ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की, तो एक है तपस्या, दूसरा ये जो प्रार्थनाएं तुमने अर्पण की, और तीसरा श्रद्धा। ये मेरी कृपा है भगवान कहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी को उन्होंने समझा दिया कि ये जो तुमने तपस्या की तुम्हारा बल नहीं था, ये जो तुमने प्रार्थनाएं अर्पण की मुझे ये भी तुम्हारा बल नहीं था, और ये जो तुम्हारा विश्वास है मुझ में कि मैं ही सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं ये भी तुम्हारा बल नहीं है, ये मेरी कृपा है। अर्थात जिस जीव के पास भगवान में श्रद्धा है, जिस जीव के पास भगवान की सेवा करने की, प्रार्थनाएं अर्पण करने की योग्यता है, जिस जीव के पास तपस्या करने का बल है, उसके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी वो कर पाता है। ये भगवान समझा रहे हैं। दूसरे शब्दों में हमें हमारी तपस्या, हमारे ज्ञान, हमारे कार्य का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर हम तपस्या कुछ कर पा रहे हैं भक्ति में, भगवान की कृपा है। अगर हम प्रार्थनाएं अर्पण अर्थात कुछ सेवा कर पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं भगवान के लिए, कुछ अन्य कार्य कर पा रहे हैं, तो ये भी भगवान की कृपा है। और अगर श्रद्धा है हमारे अंदर, भगवान के प्रति श्रद्धा, ये भी भगवान की कृपा है, अन्यथा जिनके ऊपर कृपा नहीं है उनको श्रद्धा नहीं आ सकती। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम, अनुकंपार्थम जिनके ऊपर मैं कृपा करता हूं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान मैं प्रदान करता हूं उनको। तो उनका जो जितना भी संशय नाशयामि उसको नाश मैं करता हूं, अगर उनके मन में कोई संशय है, तेषाम एवानुकंपार्थम उनके ऊपर कृपा करने के लिए अज्ञान का नाश करता हूं। तो अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया है, हम थोड़ा बहुत भागवतम भगवत गीता पर प्रवचन कर लेते हैं, भगवान की कृपा है। जिस दिन ये विश्वास हमारा हट गया, भक्ति समाप्त, भगवान की कृपा है। अगर हमें श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा, अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान की कृपा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने अंतिम श्लोकों में कही कि भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा क्या है, तुम मेरी कृपा कृपा की याचना कर रहे हो, मेरी कृपा क्या है। अरे तुमने जो इतनी अभी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, इतना ज्ञान भरी प्रार्थनाएं, मेरी कृपा है। तुमने जो तपस्या कर ली 100 वर्षों तक बैठकर कि तपस्या करनी है, मेरी कृपा है। कितनी सुंदर बात है। हम लोग भक्ति में इसको अगर समझ जाएं, हम लोग सोचते हैं मैं बहुत तपस्या कर रहा हूं, भक्ति में बहुत सरल जीवन रहता हूं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं उपवास करता हूं, मैं सुबह उठता हूं, सब कृपा है भगवान की। आपका कोई बल नहीं है, जीव के अंदर बल है ही नहीं माया से लड़ने का। माया कौन है? भगवान की शक्ति। क्या बल है आपके अंदर उससे लड़ने का? भगवान की शक्ति से कोई लड़ सकता है? माया से कौन लड़ सकता है? माया से वो लड़ सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। सरल बात है, बस तभी तो माया से लड़ पाएंगे, नहीं तो भगवान की कृपा नहीं हो तो अपनी ही शक्ति से वो कैसे हारने देंगे। शक्ति हारेगी शक्तिमान के सामने, हमारे सामने नहीं। माया को परास्त करना है, कृष्ण को हृदय में लाना है। तो ये जान लीजिए कि अगर हम कोई तपस्या कर रहे हैं, तपस्या अर्थात जो भी थोड़ी बहुत भी, भले हम हिमालय में नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर हम सुबह उठ पा रहे हैं, हम थोड़ा भगवान के नाम का जप कर पा रहे हैं, हम सेवा कर पा रहे हैं, हम अपने आप को भोगों से दूर रख पा रहे हैं, हमारा बल नहीं है, कृष्ण की कृपा है। तो पहली चीज तपस्या, प्रार्थनाएं। ब्रह्मा जी को कहा कि जो प्रार्थना भी अर्पण की तुमने वो भी मेरी कृपा है। प्रार्थनाओं का अर्थ बोलना। प्रार्थनाओं में क्या किया? उन्होंने अपने ज्ञान को प्रकट किया और उन्होंने बोला, तो ये भी मेरी कृपा है भगवान कहते हैं। और ये कृपा आती कैसे है? जब हम तपस्या अच्छी तरह से करते हैं, सिद्धांतों को सीखते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने भक्ति के सिद्धांतों का पालन किया, भक्ति के सिद्धांतों का ज्ञान तुमने लिया, तुमने तपस्या की, इसीलिए तुम्हारे ऊपर कृपा आई। तो दोनों चीजें हैं, इसको समझिए कि हम भगवान के ऊपर जब ध्यान करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तपस्या करते हैं, उसके द्वारा भगवान की कृपा आती है। और भगवान की कृपा क्या है? यही चीज है, जीव को प्रयास करना है। इसका अर्थ ये है कि कोई ये नहीं समझ सकता कि अगर मैं तपस्या नहीं कर रहा हूं तो शायद भगवान की कृपा नहीं आई है, जब आएगी तब तपस्या कर लेंगे। कोई व्यक्ति को कहा जा रहा है क्यों इतने भोगों में पड़े, अभी भगवान की कृपा नहीं आई है, जिस दिन आएगी उस दिन छोड़ेंगे। नहीं, हमें प्रयास करना है तब भगवान कृपा करेंगे, पूर्णता तब प्राप्त होगी, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि आप चिंता नहीं करो, और उसके बाद भगवान आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। और अगले अध्याय में 10वें और 11वें में हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी आगे सृष्टि करने का प्रयास करते हैं, और फिर 12वें अध्याय में ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे ब्रह्मा जी के स्तर का विसर्ग, और फिर 13वें अध्याय से बहुत सुंदर लीला वराह देव की लीला प्रारंभ होगी। हरे कृष्ण हरे